बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचा जामुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। जाया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जाया प्रभु पदा। नेताई गर हरी बोल हरी बोल हरी बोल गर हरी बोल। जय ओम विष्णु बाल ब्रह्म बाज भगवान गृह शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री बाद की जय ओम विष्णु बाल ब्रह्म प्रभाज आचार्य भगवान गृह भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी प्रभुपाद की ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की दाय गौर हरि मानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंद अध्याय 17 और श्लोक 39, 40 और 41। 39 और 41 में तात्पर्य नहीं है, 40 में है, 40 लिखा हुआ है। इतिहासम इमम पुण्यम चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यम विष्णुभक्तानां श्रुत्या बन्धनात् विमुच्यते इतिहासम इमं पुण्यां चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धन विमुच्यते इतिहासम इमं पुण्यां चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धादिमुच्यते इतिहासम इमं पुण्यां चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धा विमुच्यते। लेडीज इतिहासम इतिहास इमं यह पुण्यं परम पवित्र चित्रकेतु हो, चित्रकेतु का महात्मनः महात्मा या परम भक्त, महात्म्या महिमा युक्त, विष्णु भक्ता नाम विष्णु के भक्तों का श्रुत्वा सुनकर बंधात जीवन के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। चित्रकेतु महान महात्मा थे। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं यथा भागवत पुराण का चित्रकेतु का यह इतिहास अभक्तों अथवा बाहरी लोगों द्वारा कभी कभी गलत समझ लिया जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का उपदेश है कि चित्रकेतु का यह इतिहास किसी भक्त के मुख से सुना जाए। भक्ति संबंधी या भगवान और भक्तों के संबंध में जो कुछ भी हो उसे भक्त से ही सुने जाए, किसी व्यवसायिक वाचक से नहीं। यहाँ इसकी संस्तुति की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव का भी यही कहना है कि श्रीमद् भागवत का इतिहास भक्त से ही सीखा जाए। यह भागवत पढ़ वैष्णवीर स्थाने। मनुष्य को चाहिए कि भागवत के कथनों को व्यवसायिक वाचकों से न सुने, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण में से उदाहरण देते हुए कठोर वर्जना की है कि अभक्तों के मुख से भगवान तथा उनके भक्तों का चरित्र न सुने जाए। अवैष्णवम मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापय। अवैष्णव के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के ओठों का स्पर्श करने से दूध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण हो जाता है। जय श्री राधा रास बिहारी की जय। केवल प्रमाणिक भक्त ही अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें भक्ति योग के प्रभाव प्रभावित कर सकते हैं। श्लोक 41। या एत प्रातरुत्थाय श्रद्धया भागयत पठेत इतिहासं हरिं स्मृत्वा सयाति परमां गति। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर अपने मन तथा वाणी को बस में रखकर तथा श्री भगवान का स्मरण करके चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप नामक 17वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। इसके पहले का जो श्लोक है, एतत्ते सर्व आख्यातम यन्माम तो परिपृच्छसी वृत्रस्यासुर जातेश्चः कारणम भगवन्मते। हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त वृत्रासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, अतः मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बताने का प्रयास किया। ओम अज्ञानति में दे आर ट्रांसलेटिंग बैक साइड। हिंदी बोलने वाले आगे आ जाओ, क्यों पीछे बैठते हो तुम लोग, आद पड़ गई क्या? आगे जाओ। अंग्रेजी वाले को पीछे रहने दो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जनमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महदेवी मा पुरो विभो निर्माय से ते यदमूषु पुरुषम् भुक्ते गुणान्षोडशषोडशात्मकम् शोलम् कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। तो इस अध्याय का यह उपसंहारिक श्लोक है। इन तीन श्लोकों में तीन बातें बताई गई हैं। प्रथम श्लोक में श्रोता के गुण का वर्णन किया गया है। दूसरे श्लोक में यह बताया गया है कि किससे हरि कथा सुननी चाहिए, वक्ता का गुण। और तीसरे श्लोक में जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सुन लेता है और इसका स्मरण करता है तो इसे क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। तो इन तीनों बातों पर हम लोग विचार करेंगे। प्रथम श्लोक में कहते हैं एतत् ते सर्वम् आख्यातम् यन्माम् त्वम् परिपृच्छसि। इसी स्कंध के 14वें अध्याय में 6 श्लोकों में परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं। जब वे सुने कि किस प्रकार से वृत्रासुर को भगवत गति की प्राप्ति हुई तो स्वाभाविक ही उन्हें प्रश्न उत्पन्न हुआ। वहां पर वे गुणगान किए हैं कि भगवान का भक्ति कौन प्राप्त करता है, भगवान के धाम को कौन प्राप्त कर सकता है। लाखों लाख लोगों में से कुछ लोग प्रयास करते हैं, बड़ा ही भक्ति दुर्लभ है, सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह वृत्रासुर असुर जाति में जन्म लेने के बाद भी असुर जाते असुर भाव उत्पत्ते भगवती भक्तिश्च। ऐसा कैसे हो गया कि असुर जाति में वृत्रासुर जन्म लिया, आसुरिक प्रवृत्ति उसमें थी, आसुरिक भाव था, फिर भी उसमें भगवत भक्ति विद्यमान था। देखिए वृत्रासुर दो बात, एक कि असुर कुल में जन्म लिया और दूसरा भक्ति प्राप्त थी। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि असुर कुल में जन्म लेने का कारण और भगवत भक्ति मेंटेन करने का कारण, दो कारणों को जी गोस्वामी बतलाए हैं। कहते हैं असुर जाते कारणम महद अपराधम, असुर जाति में जन्म लिया उसका कारण था महद अपराधम, भगवान शिव के चरणों में इसने अपराध किया था। इसलिए असुर कुल को प्राप्त किया। और भगवत भक्ति कैसे उसके पास रही, कहते हैं भगवान मते कारणम महद अनुग्रह। महद अनुग्रह नारद और अंगिरा की कृपा उन पर हुई, महद सत्पुरुषों की कृपा हुई, उन सत्पुरुषों की कृपा से वे भगवतमती को मेंटेन कर पाए। तो इन्हीं बातों को, दो बातों को यहां पर जो परीक्षित जी ने पूछा था कि कॉन्ट्रेडिक्टरी लग रहा था कि एक तो है असुर कुल में जन्म लिया है, उसका आसुरिक भाव है, लेकिन फिर भी भगवान का इतना महान भक्त है, ये कैसे हो सकता है। जी गोस्वामी उसका उत्तर दिए हैं, असुर बनने का कारण क्या था और भगवत मती का कारण क्या था। सुखदेव गोस्वामी यहां पर उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जो तूने प्रश्न किया था ए तत् ते त्वाम परिपृच्छसी परिपृच्छसी। यहां पर श्रोता का गुण बताया गया है, श्रोता कैसा होना चाहिए वह बतलाया गया है। ये परिपृच्छसी शब्द से भगवान भी भगवत गीता के 14 अध्याय में ऐसा ही कुछ बताए हैं, है ना। किसी को याद है श्लोक 14 अध्याय का, क्या श्लोक है 14 अध्याय का? हाँ, तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन। और यहां पर कहा है परिपृच्छसी, प्रकृष्ट रूपेण पृच्छसी, अच्छी तरह से, यानी परिपृच्छसी का अर्थ यह हुआ कि दिखाने के लिए आप नहीं पूछे थे, अपना इंटेलेक्ट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भाव आप में था, जानने की इच्छा थी, इसलिए आपने पूछा था। और जो जो आपने पूछा था, वृत्रस्य असुरजातिश्च कारणम भगवन मते, दो चीज आपने पूछा था, क्या वृत्रस्य असुर जातस्य, वृत्रासुर का कैसे असुर जाति में जन्म हुआ, क्या कारण था, और दूसरा भगवन मते, असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवत मती को कैसे वृत्रासुर मेंटेन किए, यह कारण, दो कारण पूछे थे, उस बात को मैंने बतला दिया। सो रहा है बगल में पीला भक्त, खड़ा हो जाओ। अब जो श्रोता हैं उनके गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, पद्म पुराण में, ऐसे भागवतम में भी श्रोता और वक्ता के गुण बताए गए हैं, लेकिन पद्म पुराण में बड़ा अच्छा तरह से श्रोता और वक्ता के गुण बताए गए हैं। उसमें से कुछ गुण हैं जिन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम सब लोग श्रोता हैं, तो श्रोताओं को सीखना चाहिए, ये गुण डेवलप करना चाहिए। पहला गुण है यह स्थित्वा अभिमुखम प्रणम्य विधिवत त्यक्त्य अन्यवाद हरे लीला श्रोतु अभिप्सिते अति निपुणो नम्रो अथ कलकृताप्तांजलि शिष्यो विश्वस्थितो अनुचिन्तनः परः प्रश्ने अनुरक्तः शुचिः नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगदितः श्रोता सवै वक्तभिः। ये श्रोताओं के कुछ गुण हैं। पहला गुण है, कहते हैं य स्थित्वा अभिमुखम, जो दूर नहीं बैठता है कथा में, कहां बैठता है, अभिमुखम वक्ता के सामने बैठता है, पिलर के सामने नहीं, कुछ लोग पिलर के सामने बैठ जाते हैं पीछे है। यहां पर पहला गुण बताया गया है कि जो श्रोता है उसको चाहिए वक्ता के सामने बैठे, स्थित्वा स्थित हो जाए, अभिमुखम सामने। दूसरा गुण है वो बैठे कैसे, कहते हैं प्रणम्य प्रणाम करके, हम लोग कथा में आते हैं तो प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करके तब बैठे। तीसरा विधिवत, ये नहीं कि पैर फैला करके बैठे ऐसे ला करके कुछ है। आसन में बैठे, या तो वज्रासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, अधम पद्मासन में बैठे लेकिन आसन में बैठे, सुलभासन में बैठे लेकिन आसन में बैठकर कथा सुने। हम लोग भागवत महापुराण के यहां पर ये चित्र देखते हैं ना, परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी का। परीक्षित महाराज पिलर के पीछे नहीं बैठे हुए हैं, पीछे नहीं बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं, है ना। और वे एक आसन में बैठे हैं, ये कौन आसन है? वज्रासन। वज्रासन में एकाग्रता प्राप्त होती है, वज्रासन सतगुणी आसन है। हरि कथा सुनने के लिए वज्रासन में बैठना अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं हो सकता पद्मासन में बैठो, वो भी अच्छा है, उसमें भी एकाग्रता प्राप्त होती है। और वो भी नहीं होता है अर्ध पद्मासन में, एक ही पैर ऊपर कर बैठो कोई बात नहीं, यदि वो भी नहीं तो सुलभासन, लेकिन बैठो विधिवत, ये नहीं कि पैर पसार करके बैठो। तो ये भी एक श्रोता का गुण है, सुनने वाला का। फिर कहते हैं त्यक्त्वा अन्यवादो, आजकल फैसिलिटी हुआ है ये रेडियो से सुनने का, तो रेडियो का गाना मत सुनो, जो कथा कहा जाता है वही सुनो। या जब कथा होती है तो बीच में बात मत करो, त्यक्त्वा छोड़ दो, अन्यवादो दूसरा बात। दो प्रकार से हम सुनते हैं इसका अर्थ है, त्यक्त्वा अन्यवादो का अर्थ है कि मन को यहीं लगाओ, कथा में ही सुनो। नहीं कभी बैठे रहते हैं मन कहीं और घूमता है, मन और कुछ सुनता है, उस वो भी अर्थ है। और यहां फुसू फुसू करते हैं बैठकर, वो भी अर्थ है, दोनों अर्थ है। यानी ग्रॉस वे या सटल वे, किसी भी रूप से त्यक्त्वा अन्यवादो, कुछ भी मत सुनो, एकमात्र वही सुनो जो वक्ता कह रहा है। क्या सुनो? हरिर लीला श्रोतुम, हरि लीला हरि कथा का ही श्रवण करना चाहिए। फिर अभिषते, हमें अभिलाषा होनी चाहिए कथा सुनने में, ये भी श्रोता का गुण है कि श्रोता में अभिलाषा हो। लौल्यम एकम मूल्यम, लौल्य होना चाहिए, अभिलाषा होना चाहिए। निपुणो, और जो सुन रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर नम्रो था, नम्र भाव से कथा सुननी चाहिए। और नम्रता का उदाहरण दिया गया है, कहते हैं क्लिप्तांजलि, हाथ जोड़ करके, जैसे परीक्षित महाराज यहां पर कथा सुन रहे हैं हाथ अंजलि में प्राप्त करने के लिए। ये पद्म पुराण से पूरा चित्रित किया गया है, यही श्रोता का गुण है, है? क्लिप्तांजलि, कृप्तांजलि, बंधांजलि नहीं, कृप्तांजलि, ऐसे होकर के प्राप्त करने के लिए। शिष्यो, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, शिष्य भाव होना चाहिए। शिष्यो विश्व अशितो अनुचिंतन पर, और जो कुछ भी सुन रहे हैं उसका चिंतन करें, समझने का प्रयास करें। यदि कुछ समझ में न आए तो कहते हैं प्रश्नो अनुरक्त, प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। इस्कान ही एक ऐसी संस्था है जिसमें कथा के बाद कहते हैं एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है। अन्य कथाकार लोग ये बात नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी यथावत, ये सब एक एक बातें जो हैं दिखलाती है कि प्रभुपाद जी की प्रगाढ़ श्रद्धा शास्त्रों में, अकाट श्रद्धा प्रभुपाद जी की शास्त्रों में है, कि शास्त्रों को प्रभुपाद जी एज इट इज दिए हैं, हम लोग को एज इट इज बतलाए हैं। हम लोग तो बस आते हैं क्लास में, प्रणाम करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे ही बैठना चाहिए, आते हैं वक्ता के सामने बैठते हैं, ये शास्त्रों में कहा गया है और प्रभुपाद जी यथावत उसको ट्रांसलेट किए हैं। तो कहते हैं कि प्रश्न अनुरक्त, प्रश्न में अनुरक्त रहना चाहिए, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए। परिपृक्षसी, सुखदेव गोस्वामी का परिपृक्षसी, आपने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया, तो प्रश्न पूछना चाहिए। उसके बाद कहते हैं शुचि, वक्ता को पवित्र रहना चाहिए, नहा वहाकर कथा सुनना चाहिए, ना कि विष्णु है आ गया है ठीक है, सो रहा था भाग करके आ गया, चल कथा सुनने के लिए, नहीं, नहा वहाकर के स्वच्छ होकर कथा सुनना चाहिए, पवित्र होकर कथा सुनना चाहिए। नित्यम, प्रत्येक दिन कथा सुननी चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। और अंतिम गुण कहते हैं कृष्ण जन्म प्रियो निगदित, कृष्ण जन्म प्रियो, जो कृष्ण के प्रिय जो हैं जन भक्त लोग, उन लोगों का हमें निगदित सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसा जो श्रोता होता है, श्रोता सवई भक्ति भी, वो उत्तम प्रकार का श्रोता होता है। और प्रभुपाद जी हम लोगों को सब कुछ दिए हैं जिससे कि हम उत्तम प्रकार के श्रोता हो सकें। यदि हम उत्तम प्रकार के श्रोता नहीं हो रहे हैं तो जानिया सुनिया भी सखाइनो, जान करके सुन करके हम लोग अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। यदि इन बातों का हम यथावत पालन करें तो क्लास में नींद भी नहीं आएगी, जगे रहें कथा में सुनेंगे, क्योंकि शुचि शब्द काया हुआ है, पेट साफ हो गया है, स्नान कर लिए हैं, शरीर हल्का है, ये सब। एनीवे, तो एक कुछ गुण हैं श्रोता के, जिसमें से एक गुण का यहां पर वर्णन किया गया श्लोक संख्या 39 में, वह है परिपृक्षसी, जैसा आपने पूछा, यहां भी आया हुआ है कि प्रश्न अनुरक्त, प्रश्नो अनुरक्त, प्रश्न में अनुरक्त रहे। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया था और उनके प्रश्न का उत्तर देने के बाद अंत में पुनः सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा करते हैं परीक्षित जी का कि महाराज जैसा आपने पूछा था वैसा उत्तर दे दिया ना। वक्ता का यह भी जिम्मेदारी है कि यदि कोई प्रश्न करता है तो उसको सर्टिफाई करना, पूछना कि आप सर्टिफाइड है ना, जो मैं कहा वो समझ में आ गया ना। ये नहीं कि मैं प्रश्न उत्तर दे दिया, आप समझाया ना समझा, आपका काम है, हमारा काम नहीं है, हमने उत्तर दे दिया बस। हम लोग पूछते हैं इज इट ऑल राइट, पूछते हैं ना, सब ठीक है ना, तुम्हें कहा समझ में आया ना इत्यादि। अब वक्ता का गुण इस श्लोक में बताया गया, श्लोक 40 में, तो यहां पर कहते हैं इतिहासम इमम पुण्यः। इतिहास का अर्थ होता है, अंग्रेजी में लोग कहते हैं मैथोलॉजी, मिथ। ये गीता भागवत महाभारत रामायण ये सब मिथ नहीं है, इतिहास है। महाभारत को तो वेद कहा गया है, इतिहासम पुराणम पंचम वेद च उच्यते। जय श्री गौरदाय की जय, श्रद्धास्मारी की जय। जो इतिहास पुराण यानी जो महाभारत है उसे पंचम वेद च उच्यते, उसको पांचवा वेद कहा गया है। ये मूर्ख लोग हैं जो नहीं जानते हैं इतिहास, वो लोग कहते हैं मिथ है। और जो उन मूर्खों के चेले हैं जो फैसिनेटेड हैं उन लोगों के द्वारा, वो लोग भी कहते हैं ये मिथ है। मैं एक दिन सोच रहा था कि कौन कहता है कि मैथोलॉजी है, दुर्मावतार प्रभु ये बात कौन कहता है कि ये भागवत और रामायण ये मैथोलॉजी है, मोस्टली कौन कहते हैं है? साइंसिस्ट लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानते हैं, वो इतिहास जानते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं इतिहास। जब जानते नहीं तो क्या कहेंगे, मिथ है। जो जानते नहीं है तो उनकी मूर्खता है। अंगूर नहीं मिलता, अंगूर खट्टे होते हैं। अरे बल्कि अच्छा है कह दो भाई हम नहीं जानते हैं, एक ही कहते हो कि मीठ है। इतिहास का अर्थ ही होता है इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, एक घटना घटी हुई है, घटी हुई एक क्रम को इतिहास कहा जाता है। इतिहासम इमम पुण्यम, इतिहास बहुत है। महात्मा गांधी का भी इतिहास है, अन्य लोगों का भी इतिहास है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक इतिहास का बात करें। इमम यह जो मैंने अभी कहा वो कैसा इतिहास है, पुण्यम, ये पुण्य इतिहास है। और ऐसे इतिहास को सुनने से दिल साफ हो जाता है। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णन किया गया है, श्रोताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, पुण्य। तो यह जो इतिहास है चित्रकेतु के संबंध में, एक कैसा इतिहास है, पुण्य इतिहास है। ये मेटेरियल पायटी से नहीं लेना चाहिए, स्पिरिचुअल पायटी से। यह हरि कथा जो है वो मेटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये चित्रकेतु के विषय में कहना और सुनना ये पुण्य है। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृष्टताम, हृदय के अंदर के जितनी भी कलमस्ताएं हैं, जितनी भी अनवांटेड डिजायर हैं, वो सब साफ हो जाता है और हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड। सुहृष्टताम बिकम संत, बिकम प्योर डिवोटी बाय हियरिंग हरि कथा। तो इतिहासम इमम पुण्य, चित्रकेतु महात्मनः, चित्रकेतु के विषय में। और चित्रकेतु हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी एक महाभागवत हैं। वे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं चित्रकेतु को, जो असुर कुल में जन्म लिया, असुर के समय समान काम किया, सब कुछ करने के बाद भी सुखदेव जी कहते हैं कि वो कैसे हैं, महात्मनः, वो महात्मा है, ऑर्डिनरी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात कहते हैं, पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं यथा भागवत पुराण का, चित्रकेतु का यह इतिहास अभक्तों अथवा बाहरी लोगों द्वारा कभी नहीं, कभी कभी गलत समझ लिया जाता है। वो लोग नहीं समझ पाते हैं चित्रकेतु द्वारा असुर कुल में था, पूरा आनंद उठाया, आसुरिक प्रवृत्ति था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महात्मा है चित्रकेतु, ऑर्डिनरी नहीं है, महात्मा है। महात्मा किसे कहते हैं, महात्मा हरिदास, महात्मा किसे कहते हैं, हैं? मत काम, जैसे कुछ लोगों को मार डालना है, मत काम हो गया, गीता में महात्मा का डिफिनेशन बताया गया है, कौन जानता है, हाँ यस यस आई कैन हियर यू, हाँ महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रित भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। एक जगह और महात्मा का डिफिनेशन बताया गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, नहीं ये नहीं है, वासुदेव सरमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सरमिति, जो सब में वासुदेव का दर्शन करता है, यह सब कुछ भगवान से निकला हुआ है जो यह समझता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सब कुछ भगवान से निकला हुआ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ भगवान से निकला हुआ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है।
मायावादी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान सिंगला है, सब भगवान है, प्रभु भगवान दिए हैं कि ये फोर्ड गाड़ी है, फोर्ड गाड़ी का कहते हैं प्रभु भगवान देते हैं फोर्ड गाड़ी का, ऑल द कार लिखा हुआ है फोर्ड, कार जो है वो फोर्ड है लेकिन मिस्टर फोर्ड कार नहीं है, है ना। फोर्ड गाड़ी को देख करके कोई नहीं सोचा रहे मैंने मिस्टर फोर्ड को देख लिया, वो गाड़ी है। तो सब कुछ भगवान से निकला हुआ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। प्रभा जी मजाक उड़ाते हैं, वो दरिद्र नारायण वाला बात करते हुए कहते हैं दरिद्र नारायण, वो कहते हैं सब कुछ भगवान है, दरिद्र भगवान है, दरिद्र नारायण कहते हैं, कुत्ता भगवान, गद्दा भगवान, गाय भगवान, उसका पूजा क्यों नहीं करते हैं, गाय क्यों काटते हैं, वही भगवान है उनकी फिलॉसफी के अनुसार। तो महात्मा वह है जो सम्यक भगवान का दर्शन करते, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणी गव्यस्तनी सुनिश्चय पाकच पंडिता समदर्शिन, ये महात्मा के कुछ डिफिनेशन बताए गए हैं। तो चित्रकेतु वैसे ही महात्मा है, ऑर्डिनरी नहीं है, चित्रकेतु महात्मना, दैवी प्रकृति में आश्रित, भले असुर कर्म में जन्म लिए थे लेकिन दैवी प्रकृति में आश्रित थे। अमीन चित्रकेतु का जो अभिलाषा है लास्ट में, अयम हरे तो पादैक मूलम दासानुदासा भवितास्मि भूयो, वो तीन जो श्लोक है कितना पावरफुल श्लोक है, न नाक पृष्ठो न च पारमिष्ठ, ममोत्तम श्लोक ममोत्त श्लोक जनेषु सख्यम, कैसी सुंदर सुंदर कामना है। तो इन सबको समझते सुखदेव जी कहते हैं चित्र केतु महात्मनः, चित्र को तो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, महात्मा है। अब ऐसे महात्मा के विषय में जानने के लिए महात्म्यम विष्णु भक्तानाम, ऐसे महात्मा के परम भक्त के विषय में जानने के लिए हमें एक महात्मा के पास जाना चाहिए, महात्म्यम जो महिमा युक्त है, जिसकी महिमा हो। तो जो वक्ता होता है उसका गुण बताया गया है, यहां पर दो शब्द कहा गया है, महात्म्यम विष्णु भक्तानाम, जो वक्ता है उसके दो गुण यहां बताए गए, एक है महात्म्यम जिसकी ख्याति हो, और दूसरा विष्णु भक्तानाम जो विष्णु का भक्त हो। जब सुत गोस्वामी आए तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग उनका वेलकम करते हुए कहते हैं, किसी को याद है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पांचवां श्लोक या छठा जो भी है, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातान अभिधान आख्यातान अपि अतानि शास्त्र, समझ ऐसे ही है, त्वया खलु पुराणानि, खलु मतलब निस्संदेह, हे सुत गोस्वामी आप कैसे हैं, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ, आप इतिहास पुराण को अच्छी तरह से जानते हैं, च मतलब और भी, जितना भी वेद वेदांगना उपनिषद जो कुछ भी है च, और साथ साथ अनघ, अघ मतलब पाप और अनघ मतलब पाप से परे। प्रभुपाद जी कहते हैं एटलीस्ट वक्ता को फोर वाइसेस से फ्री होना चाहिए, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। आज ऐसे वक्ता है कि उठते इनको चाय चाहिए, वो वक्ता से नहीं सुनना चाहिए, चाय पीने वक्ता से कॉफी चाहिए, वैसे वक्ता से नहीं सुनना चाहिए, वो क्वालिफाइड नहीं है भागवत के अनुसार। जो चार नियम पालन करता है, जो गीता भागवत को जानता है, आख्यातान अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्वितः, जो कि व्याख्या करने में एक्सपर्ट है। व्याख्या करने में एक्सपर्ट का मतलब होता है जो श्रोता के लैंग्वेज को बोलता हो। यहां लोग हिंदी जानने वाले हैं, कोई चाइनी में बोलना शुरू करे तो एक्सपर्ट वक्ता नहीं है। एक्सपर्ट वक्ता वही है जो कि श्रोता के लैंग्वेज को बोले, जो श्रोता समझ सके, वही महिमा युक्त व्यक्ति है, वही महात्म्य है, उसी वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो वहां पर वर्णन किया गया है वक्ता के गुण। वैसे ही पन पुराण में वक्ता का गुण बताया गया है, कहते हैं भगवत मती। यहां पर बताया विष्णु भक्तानाम, पहला गुण है वक्ता का कि भगवत मती, जो हमेशा कृष्ण कांसस हो, जिसका मन निरंतर भगवान में लगा हो, जो निरंतर भगवान नाम लेता हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय प्रभुपाद जी, सुखदेव गोस्वामी, इन लोगों का मन भगवान में लगा हुआ था। आप भागवत में देखेंगे, ये भागवत की कथा क्रमिक कथा नहीं है, क्रम में नहीं है, आगे पीछे है, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा था और जो देखते थे उसका वर्णन करते थे। तो भगवत मती मतलब वक्ता वही है जो भगवान के साथ में अपने मन को लगा करके भगवान से, भगवत मती का अच्छा व्याख्या हो सकता है कि जो भगवान से प्रार्थना कर करके भगवान से परमिशन लेकर के उनके विषय में बोलने जा रहा हो, वही बोलता है जो भगवान को अच्छा लगता हो। भागवत मती उल्टा सुल्टा नहीं बोलता है। और जो भगवान का भक्त हो, मन मना भव मत भक्त हो, जिसका मन भगवान लगा हुआ है, भागवत मती अनपेक्षा, उसे कोई अपेक्षा न हो कि मैं कथा कर रहा हूं 10-15 चेला बन जाएंगे, कथा कर रहा हूं लोग कोई दान देंगे, धोती छाता और जो भी देते हैं ना आजकल भागवत कथा में, है? 2-4 किलो आटा मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, अपेक्षा न हो। एकमात्र यदि अपेक्षा हो तो कृष्ण का भक्त बन जाए, कृष्ण को प्राप्त करे। और वास्तव में ऐसे शुद्ध वक्ता से कोई सुनेगा तो जरूर कृष्ण का भक्त बनेगा। उदाहरण है प्रभुपाद जी, अनपेक्षित हैं, कोई अपेक्षा से धन कमाने अमेरिका नहीं गए प्रभुपाद जी, हॉस्पिटल खोलने और फूड फॉर लाइफ शुरू करने प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए, वो कृष्ण को देने के लिए गए, कृष्ण को देने के लिए गए। तो अनपेक्षा सुहृदो मतलब क्लीन हार्टेड, जो क्लीन हार्टेड हो, जिसके दिल में मान अपमान इत्यादि का कोई अभिलाषा न हो। सुहृदो दीनेशु सानुकंपयो, जिसके पास कृष्ण भक्ति है वह सबसे धनी है, और जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है वह दीन है, वह गरीब है। दीनेशु स अनुकंपया, उन लोगों के लिए जिनके पास कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उनके लिए एक अनुकंपा हो, जैसे महाप्रभु नमो महाबदान न्याय, महाबदान दे मैग्नेनमस थे, तो उसे अनुकंपा हो। बहुधा बोधना वह कथा पहले किया हो, सुना भी हो, और जो सुना है लोगों को सुनाया है। चतुरो वक्ता, चतुरो वक्ता का मतलब है ना कि ट्रिकी वक्ता, ऐसा बात नहीं है। चतुरो का मतलब टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उदाहरण दे दे करके कथा सुनाए। जैसे भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी, देखो आप लोग उनका उपदेश उपाख्यान पढ़ा ना आप लोगों ना, नहीं पढ़ा, उसमें कई कथाएं हैं। हो सकता है वेद पुराण कथा ना हो, लेकिन उपदेशी उपाख्यान उपदेश का है। आप लोग कथा जानते होंगे, यस नो वेरी गुड, जानते हो कथा? नहीं, सुना देता हूं। ये ब्रिटिश जमाने में एक बार एक गांव में मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। ओ तो एक लड़का था, वो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिया था, वो तीन शब्द पढ़ा था, यस नो वेरी गुड। गांव वाले कुछ अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो ब्रिटिश राज था तो पुलिस वाले आए, वो भी अंग्रेजी कुछ नहीं जानते थे, तो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे वो लोग, अपने भाषा में, तुमने मर्डर किया है, गांव वाले कौन मर्डर किया। सब गांव वाले बड़े कांप रहे, डर रहे थे। ये भागते भागते आया पुलिस के पास, बोला यस नो वेरी गुड। पुलिस वाला समझे कि साहब का चमचा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो लोग केस रजिस्टर कर लिए, किसी को अरेस्ट नहीं किए, चले गए। जब केस खुला तो उसने कहा गांव वाला, तो आप लोग यहीं रहो, मैं जा रहा हूं कोर्ट में, मैं सब देख लूंगा वहां पर जाकर के। अंग्रेजी पढ़ा था, गांव वाले बड़े खुश थे, गया। तो जज ने पूछा कि तूने मर्डर किया है, हैव यू मर्डर? ही सेड यस। फिर जज ने कहा कि तुम्हारे पक्ष में कोई है गवाह तुम्हें बचाने के लिए? कहा नो। जज ने कहा ऑल राइट, यू आर गोइंग टू बी हैंग। इज इट वेरी गुड? तो यह यस नो वेरी गुड, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। वैसे ही वो एबीसीडी वाला भी है, जो लोग नहीं जानते हैं, वो एक बुढ़िया थी, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। तो एक टीचर उसने ट्यूशन पर रखा, तो टीचर उसको पढ़ा रहा था एबीसीडी। बुढ़िया बेचारी सुन रही थी, अभी तो अंग्रेजी सीख रही थी, तो वो टीचर उसको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, त्रिकोणमिति। मान लो कि ए बी सी डी एक त्रिकोण है, तो ए और बी मिलता है, तो सी और ए से बड़ा, जैसे बता रहा था। तो त्रिकोणमिति वो डेली ए बी सी डी पढ़ा रहा था। तो एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, एक हफ्ता से एबीसीडी ही पढ़ा रहा है। बुढ़िया सुन रही थी, कहीं बदमाश ये टीचर है, चीटिंग कर रहा है, हम इससे पढ़ा देते हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, और डेली एबीसीडी पढ़ा रहा है। वो झाड़ू उठाई है चली मारने के लिए, कि बदमाश तो एबीसीडी पढ़ा रहा है बच्चे को अभी तक से इतना दिन, तो उसे ज्ञान नहीं था। तो वैसे ही लोगों को ज्ञान नहीं है, और लोगों को लोग बोल कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं। तो चतुरो वक्ता का मतलब वह वक्ता एक्सपर्ट हो कि लोगों को कृष्ण में लगा सके, उनके लोगों के भाषा को वह बोल सके, चतुरो वक्ता। और सम्मानितो मुनि भी, साज समाज में उसका सम्मान हो, सम्मानितो। यहां पर महात्मना शब्द, महात्म्य शब्द कहा गया है, महिमा युक्त व्यक्ति हो। और यहां पर कहा गया सम्मानितो मुनि भी, साधु महात्माओं के बीच में इसका सम्मान हो, ऐसे लोगों से कथा सुनना चाहिए। भक्त्या महात्म्यम विश्व भक्तानाम भागवत सुनेगी या भागवत स्थाने, ऐसे लोगों से कथा सुनेंगे तब उसका प्रणाम कहते हैं, जब तब पावरफुल कथा होगा। कहते हैं श्रुत्वा बंधाद्मुच्यते, जो बंधन है बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज, ये बंधन है। उसके बाद प्रकृति के तीन गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का बंधन है। असली बंधन जो है, गुण मतलब रस्सी जो बांध कर रखा है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस बंधन से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। भगवान स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरतया, इसे पार करना दुहतया बहुत कठिन है। लेकिन मामे वो जे प्रपदंते माया मे ताम तरंते थे, जो मेरे शरण में आते हैं वही पार हो सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से, प्रभुपाद जैसे भक्तों के मुखारविंद से सुनने के बाद हमारा जो भव बंधन है, प्रकृति के तीन गुणों का बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है, कहते हैं बंधात विमुच्यते, नॉट ओनली मुच्यते, विमुच्यते, एक बार हो गया ताड़ी पार हो गया, फिर नहीं आएगा, विमुच्यते। यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। इस श्रवण करना बड़ा पावरफुल है। अजामिल सपना में सुन लिया विष्णु दूतों से, उसका भी मुक्ति हो गया, वो मुच्यते है, वो भी मुच्यते नहीं है। लेकिन साक्षात जो सामने बैठ करके हरि कथा सुनता है, वो भी इस इतिहास के विषय में, इस महात्मा चित्रकेतु के इतिहास के विषय में, जो एक दूसरे महान आत्मा से महिमा युक्त वैष्णव के मुख से सुनता है, तो सुनने के बाद बंधा विमुच्यते, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब आगे का जो श्लोक है, अब प्रैक्टिस के लिए कहते हैं, कहते हैं य एत प्रातः उत्थाय, जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उठ कर करके, प्रातः उत्थाय सुबह उठ करके श्रद्धया, श्रद्धा के साथ बाग्यत पठेत, यानी उच्चारण करते हुए इसका जो पाठ करता है, इतिहासम हरि स्मृत्वा सयाति परमाम गति, इस इतिहास का, भगवान का कितना, कोई कह सकता है अरे भगवान के नाम लेने से लोग भगवान के धाम जाते हैं, ये चित्रकेतु का नाम लेने से थोड़ा भगवान के धाम जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जाएंगे। इतिहासम हरिम स्मृत्वा, इतिहास ऑर्डिनरी इतिहास नहीं है, इस इतिहास से हरि की स्मृति होती है, भगवान की स्मृति होती है। और जो भगवान का स्मृति करते हुए जीवन को यापन करता है और जीवन के अंत में भगवान का स्मृति करते हुए देह को त्यागता है, वह व्यक्ति सयाति, वह प्राप्त करता है क्या, परमाम गति, परम गति को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कल से हरे कृष्ण महामंत्र करना छोड़ दो और यही पाठ करना शुरू करो। सुखदेव गोस्वामी ये जनरल स्टेटमेंट दिए हैं कि जो व्यक्ति महाराज चित्रकेतु या वृत्रासुर जैसे महात्मा के शुद्ध कथा का जो श्रवण किया है, उसका गुणानुवाद करता है सुबह सुबह उठ करके, और उस अनुवाद से, उस पाठ से उसे हरि का स्मरण होता है, तो स्वयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करता है। और हरे कृष्ण महामंत्र करने का भी वही होता अर्थ, हरि स्मरण ही हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो इस प्रकार से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महाराज चित्रकेतु का जो कथा है और वृत्रासुर का जो कथा है, ये कोई ऑर्डिनरी कथा नहीं है। भागवत में कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है, भागवत में सब कुछ ऑर्डिनरी है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसलिए जो कुछ व्यक्ति सुनता है शुद्ध भक्त के मुख से, तो स्वाभाविक है कि उसे त्रिगुणातीत हो जाता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है, जो हम लोगों को प्रभुपाद जी दे चुके हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? जो भी प्रश्न पूछना अभी पूछ लो, ना कि बाद में आगे बढ़ जाते हैं चार तरफ पूछने के लिए, सामने ही पूछ लो, क्या तकलीफ, सबको दूसरों को फायदा मिल जाएगा।
हरे कृष्ण। सर प्रभु जी, आपने जो कहा जी, मतलब प्रभुपाद जी जो अमेरिका गए थे फूड फॉर लाइफ करने के लिए नहीं गए थे,
मैं सोचा कोई पूछेगा ऐसा। हाँ,
क्योंकि हम लोग, मतलब आप कुछ वजह हो इसलिए आपने कहा होगा, तो और आप थोड़ा और क्लियर करेंगे। जैसे कि हम लोग का इस मिशन का तीन एक्टिविटी है, एक तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद और हरिनाम संकीर्तन, और फूड फॉर लाइफ तो जहाँ तक है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग जो फूड फॉर लाइफ करते हैं वो तो भगवान प्रसाद देते हैं। और प्रभुपाद जी जब थे तब उस समय फूड फॉर लाइफ उनके सामने भी हुआ, प्रभुपाद ने जैसे मुकुंद महाराज के साथ एक लेटर है उसमें उन्होंने कहा कि आप फूड फॉर लाइफ करो, तो आप मतलब क्या वजह है, मतलब कहे क्यों कहे कि प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए?
वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि लोगों को कृष्ण में लगाने के लिए प्रभुपाद जी गए थे। फूड फॉर लाइफ या प्रसाद वितरण जो है वो माध्यम था लोगों को कृष्ण में लगाने का। अन्य लोग जाते हैं, दरिद्र नारायण है, ये करो ये करो, मैं सोशल एक्टिविटीज का बात कर रहा था, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। प्रसाद वितरण करना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, ये सोशल नहीं है। और प्रसाद भक्ति में बाधक नहीं होता है, साधक होता है। तो प्रभुपाद जो कुछ भी दिए साधक दिए हैं। जय तो स्वामी, अभी कानपुर में बड़ा सुंदर बात, हमको बड़ा अच्छा लगा कि आजकल लोग कहते हैं इस्कान वाले कुछ फिलेंथ्रोपिकल एक्टिविटीज क्यों नहीं करते हैं, हैं? तो उन्होंने कहा कि इस्कान एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईटी है, आईआईटी एक इंस्टीट्यूशन है, और नोबडी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आईआईटी टू गो एंड डू फूड फॉर लाइफ और गो और गो ऑन डू सम आई कैंप, गो एंड डू सम अदर थिंग फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज। आईआईटी इंस्टीट्यूशन है, उसका एक काम है। चाहे दूसरे शब्दों में जो लोग फिलंथ्रोपिकल एक्टिविटीज काम करते हैं उनको बोलो तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम वही है। तो हमारा जो काम है वही करना चाहिए, और हमारे काम में जो कोई सहायता करता है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी गए थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, यही हमारा काम है। भगवान इसीलिए आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का मिशन है, और उनके मिशन में लगना ही भक्तों का काम है। तो प्रभुपाद जी ये काम करने गए थे। ये प्रसाद वितरण अच्छा है, सहायता करता है।
और लेटर है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मुझे अगर गवर्नमेंट पैसा देगी सरकार, तो जितने भी गरीब लोग हैं कलकत्ता में सबको मैं प्रसाद दूंगा या खाना खिलाऊं, प्रसाद खिलाऊं। प्रभुपाद
खाना नहीं, प्रसाद।
हाँ, प्रसाद खिलाऊं, गवर्नमेंट अगर मदद करे तो।
हाँ, तो प्रसाद खिलाने में और खाना खिलाने में अंतर होता है। हम लोग खाते हैं, हम वही खिलाएंगे, जो कुछ है भगवान को अर्पण करेंगे, बाद में खिलाएंगे। प्रसादम ही सर्व दुखानाम, सब दुख खत्म हो जाएगा प्रसाद लोग खाएंगे तो।
और एक आखिरी, हम जहाँ भी फूड फॉर लाइफ करते हैं तो वहाँ तो हम लोग हरिनाम भी करते हैं साथ में, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फिर आई थिंक इट्स कंप्लीट।
तो मैं उसको कंट्रडिक्शन में नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ प्रसाद बांटो। ऐसे इसके विषय में ज्यादा सुनना है तो जय जो स्वामी महाराज से आप सुन सकते हो, मुझसे नहीं। और कोई प्रश्न? हरिदास का प्रश्न है भाई।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि जो पद्म पुराण बोले कि वृद्धासुर असुर कुल में जन्म हुआ, ये ठीक है, किंतु वृद्धासुर कोई भागवत क्लास में तो नहीं बैठा था। जहाँ बोले कि पद्म पुराण लिखा है वक्ता के सामने बैठना, प्रणाम करके बैठना और विधि आसन में बैठना, लेकिन वृद्धासुर तो कोई गीता भागवत ही कुछ नहीं सुना था। लेकिन ये जो मरने के बाद कैसा उद्धार हो गया? कोई मैं चाहता हूँ कि कोई भक्त
महत सेवा, आप सुने नहीं, जीव गोस्वामी कारण बताए हैं कि वृत्रासुर असुर क्यों हुआ। असुर हुआ क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया।
हाँ, इसलिए तो बताया ना।
और उसे कृष्ण की स्मृति कैसे बनी रही? महत कृपा से, अनुग्रह, महता अनुग्रह। नारद मुनि और अंगिरा का अनुग्रह हुआ था जब वो चित्रकेतु थे, तो उस समय सामने बैठे थे, उस समय सामने बैठे थे। तो हरि भजन जो है ना, ये अब्सोल्यूट है। ओम प्रणमदः प्रणमदम प्रणयात प्रणमदचते प्रणश्च प्रणमादाय प्रणमेव अवशिष्यते। यदि चित्रकेतु के रूप में उन्होंने सुना था नारद मुनि से, जो सुना था वो अकाट्य था, वो हमेशा रहा, खत्म नहीं हो गया। असुर ज्योनि में जाने के बाद भी उन्हें स्मृति बना रहा। नारद जी का कृपा है, महत कृपा था।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है,
ये समझ में आ गया ना?
हाँ जी जी। हाँ। और दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, सप्ताह में हमारा चार दिन ऐसा हिंदी क्लास में होगा तो अच्छा रहेगा। वो जो इंग्लिश क्लास होता है, मैं पीछे बैठ के कभी कभी मैं उड़िया गाना भी सुनता है। मैं सच बोल रहा हूँ, पर मन नहीं लगता। कोई एबीसीडी पाठ पढ़ रहे क्या पढ़ रहे, मन नहीं लगता। जो आप बोलते हैं हमको अच्छा लगते है, कुछ भी क्वेश्चन भी हम
उड़िया के हिंदी वाला क्यों नहीं सुनते हो?
ये सत्य है, क्योंकि मैं पीछे बैठता है, जो इंग्लिश क्लास होते मैं समझ नहीं पाती। प्राय भक्त बोलते हैं हमारा सप्ताह में कम से कम चार दिन हिंदी क्लास होना चाहिए।
बात तो होता है ना हिंदी में,
होता ठीक से नहीं कर नहीं पाते जो हिंदी।
ठीक है, कल से आप अनुवाद करो। ये केवल कंप्लेनिंग काम मत करो, कभी अच्छा भी काम करो ना। वो उड़िया सुनने के बजाय, उड़िया भजन सुनने के बजाय आप वही सुनो, कृष्ण का नाम तो होता है ना कई एक बार। और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करो, क्या तकलीफ है? अभी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के आप सदस्य हो, और मुझे पूरा विश्वास है आपका पासपोर्ट पड़ा हुआ है ना। पासपोर्ट नहीं है, बाद में अमेरिका जाने का प्रयास करोगे तो सीख लो अंग्रेजी, अच्छा है, काम करेगा। नहीं तो बाद में कभी गुरु बनोगे तो अमेरिका जाओगे तो सीख लो कभी से। इस्कान का भक्त मतलब अंग्रेजी सीखना जरूरी है भाई। ऐसे भी जुहू के लिए प्रभुपाद जी कहे थे कि जुहू एक स्पेशल सेंटर है। He wanted all the foreigner to stay in guest house. जुहू इंटरनेशनल प्लेस है, बॉम्बे इंटरनेशनल है। आजकल तो रिक्शा वाला भी अंग्रेजी बोलते हैं, वो डॉलर मांगते हैं अंग्रेजी अमेरिकन लोगों से, पैसे रुपया नहीं मांगते हैं एयरपोर्ट पर चाहे कहीं पर। एनीवे, और कोई प्रश्न? हरिदास प्रभु का प्रश्न अच्छा होता है थोड़ा, ताकि सब लोग हंस सके कम से कम। एक कम बात थोड़े है, सबको हंसाने वाला प्रश्न होता है। और कोई प्रश्न? यस,
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जब उनसे क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते थे कभी भी अपने गुरु से, ज्यादातर वो कहते थे कि मेरे को सब सुनने में ही अच्छा लगता है। वो जैसे लीलामृत में मैंने पढ़ा, तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते थे जबकि उनको कभी कभी समझ नहीं आता?
उन्होंने कई एक प्रश्न किया है प्रभुपाद से, पत्र लिख करके प्रश्न किए हैं कि सब सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आपका बहुत सेवा करते रहते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम आपका उतना सेवा नहीं कर सकते हैं, हम क्या सेवा करें? तो उन्होंने कहा तो अंग्रेजी जानता है, जाकर अमेरिका में प्रचार करो। ये प्रश्न का उत्तर था ना, माध्यम कई एक होता है। और कोई प्रश्न? यस, कोई बात नहीं, पूछ लो, हम परमिशन देते हैं आपको पूछने के लिए। ये भी एक अच्छा चीज है, जब हम उत्तर नहीं देना चाहते आप वही प्रश्न करो जो कहा गया है, तो बाद में कहते कोई कर लो। ठीक,
एक कांग्रीगेशन ने प्रश्न पूछा था,
एक सेकेंड, लेकिन वास्तव में भक्तों को चाहिए जो कहा गया है उसी में से प्रश्न करना। लेकिन यदि कहीं कोई प्रश्न कर दिया है उसमें उतरना है तो पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है।
हनुमान जी तो हम लोग,
जोर से बोलो ना,
हनुमान जी को तो हम भी पूजा करते हैं।
हनुमान जी आश्रम में होंगे भाई, हनुमान कहाँ है?
राम जी के चरणों में। तो कहीं कहीं पर पंचमुखी हनुमान का पूजा होता है, तो पंचमुखी हनुमान ये क्या प्रामाणिक है या कैसे पूछ रहे?
मैं नहीं जानता हूँ, भागवतम में पंचमुखी हनुमान का वर्णन नहीं किया गया है। भागवतम के पांचवें स्कंद में हनुमान जी के विषय में थोड़ा सा बताया गया है बस, कि कैसे वे भगवान राम की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। और अपना गुण अपना अपने भाग्य का गुणगान किए हैं कि हम तो जंगली हैं, हम तो पशु हैं, फिर ही प्रभु श्री राम ने हमको अपने सेवा में रखा। हनुमान जी कृतज्ञता बताए हैं। होगा कहीं पर पंचमुखी भी, मैं जानता नहीं इसलिए ना भी नहीं कर सकता हूं, हाँ भी नहीं कर सकता हूं। कोई और जानता है यहां पर पंचमुखी हनुमान का? असीम जी कोई जानता तो बताओ, सबको लाभ मिलेगा। यू नो पंचमुखी हनुमान? ओके, गिव माइक माइक माइक। यही साधु संघ, ये बड़ा छोटा का बात नहीं है, वक्ता श्रोता का नहीं, सब पूछ सकते हैं।
Panchamukhi Hanuman appeared to Raghavendra Swami, who is considered in Madhva Sampradaya to be incarnation of Prahlad Maharaj. So in Madhva Sampradaya they worship Panchamukhi Hanuman. That's okay. In Mantralaya.
Madhva Sampradaya mein Panchamukhi Hanuman ka puja karte hain. Vayu ka avatar unhe mana jata hai. Very good, thank you. Apne sampradaya mein nahi. And apne Madhva Sampradaya apna sampradaya hai, lekin. Any other question? Mataji log? All right. Yes, no, very good. Chalo. Srila Prabhupada ki jai.